نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Don't be sad، لا تحزن، غم نہ کرو. کوئی بھی نام رکھ لیجئے، ان سارے ناموں سے ہم آج اپنے غم نہ کرو کورس کے ڈے نمبر 29 کا آغاز کرتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے پاس اللہ کے کلام میں سے ایک آیت موجود ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اور یہاں سے آپ دیکھیے کہ روز ایک آیت پڑھنا مجھے ایسی فیلنگ دیتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشکلات آتی تھی تو ساتھ ہی قرآن پاک میں آپ کو گائیڈ کر دیا جاتا تھا، تسلیاں دی جاتی تھی. تب دیکھیے کہ چوتھی آیت آنے لگی ہے ام موسیٰ اور موسیٰ کے بارے میں. فردت ناہ الا امی کئی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. ہم نے اس کو یعنی موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے، اور تاکہ وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. آج تیسری دفعہ تو صرف ام موسیٰ کے متعلق آیتوں میں یہ آیت آئی ہے، پیچھے دو دفعہ آپ سن چکے ہیں. آج اس کو پڑھاتے وقت مجھے ایک چیز محسوس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر انسان زندگی میں چاہے چند لمحے کا ہی صبر کر لے، اللہ تعالیٰ رہتی دنیا کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے. جیسے آج کل ذلحج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کے قصے ہمارے دل و دماغ میں رہتے ہی ہیں. وقت تو مشکل تھا لیکن طویل تو نہیں تھا نا. یعنی یہاں ایک جملہ لکھے اپنے لیے کہ یہاں اگر ام موسیٰ کی بات دیکھے، وہ جو صبر تھا کتنا کو وقت لگا ہوگا ایک بچے کو اس گھر سے جا کر فرعون کے محل تک پہنچنے میں، لیکن اس ماں کا صبر قیامت تک کے لوگوں کے لیے راہ ہدایت بن گیا. یہ دعا کیجیے اپنے لیے کہ اللہ ہمیں زندگی میں کچھ ایسا کرنے والا بنا کہ ہماری زندگی دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. خدا تم محتدین، یہ دعاؤں میں بھی دعا ہے. تو یہاں اس ماں کے صبر کو دیکھیے کہ جب ماں صبر کرے گی تو بچے میں بھی صبر آئے گا. آج ہمیں ایسی مائیں اور ایسی ماؤں کو کہہ لیجئے کہ آگے لانے والا بننا ہے کہ جو بچوں کے بارے میں اللہ کے حکموں پہ صبر کرے. اور اس آیت میں ایک اور خوبصورت بھی چیز دیکھیے کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک بننا یہ بڑا خوبصورت عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی جو دعا پیش کی اس میں بھی تو یہی ہے نا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کہ اللہ ہمارے شوہروں، یعنی مراد ہے کہ سپاؤسز، شوہر ہے تو بیوی، بیوی تو شوہر، دونوں کے لیے ہمارے شوہروں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. سوال لکھیے، ایک بات پہلے تو بتائی بہت دفعہ، آج شاید کسی اور کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنتی ہے اولاد؟ کئی تقر عینہا. آپ دیکھیے کہ انسان خوشی سے بھی رو پڑتا ہے. مفسرین نے اس کی ایک تفسیر کی کہ ہماری اولاد اتنی نیکیاں کرے یا اتنی بڑی نیکی کرے کہ ان کو نیکی کرتا دیکھ کر ہماری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئیں. اور جب آنکھ میں آنسو آتے ہیں نا تو پانی کی وجہ سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. یہ ہے قرۃ العین. آنکھوں کی ٹھنڈک نیکیوں کو کرتا دیکھ کر ہونی چاہیے. آپ اپنے لیے ایک چھوٹا سا سوچ کا نقطہ رکھیے جس پہ بعد میں سوچیے گا، کیا میں نے اپنی اولاد کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ ایسی نیکیاں کریں کہ ان کو دیکھ دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں؟ اولاد کی محبت نہ کہنے والی بات ہے نہ سننے والی بات ہے، یہ اللہ نے ڈال دی، اس پہ تو کوئی شک نہیں. آج ہماری آنکھیں اولادوں کو دیکھ کر ٹھنڈی تو ہوتی ہیں، کیا دوسری طرف بھی ٹھنڈک ہے؟ اور دوسری بات دیکھیے کہ اللہ نے اولاد دے اور اس کو سہارنے والا بھی دے. کل مجھے بتایا گیا کہ اوسلو میں، ناروے میں بلکہ، ایک اوپر سبھی ہی جاتے ہیں سردیوں میں، جیسے پاکستان میں ہلی اسٹیشنس ہیں تو اوپر کا علاقہ ہے، آبشار بہتی ہیں اور سب کچھ، ایک سال کا بچہ ماں کی گود سے پھسلا، آبشار میں گرا، نیچے پانی کے فلو میں وہ بچہ آگے گیا، ماں بھی پیچھے گئی ہے. माँ को निकाल लिया, बच्चा नहीं मिला। 5 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी मिली, पानी को ब्लॉक करके। कल से ये वाक्या दिल पर है, और ये भी तो गम ही था ना किसी माँ का। कोई भी माँ हो, हमें क्या लगे, हम उसको जानते हैं कि नहीं, लेकिन वो औलाद जो एक सेकंड में माँ की गोद से गिर के कब्र की गोद में चली जाए, आप सोचिए तो सही कि माँ के हाथ में भी तो बच्चे फिर गिर जाते हैं ना। फरिश्ता अजल आए तो माँ की गोद में ही जान लेके चला जाए। आज उस माँ से कोई पूछे, क्या कभी वो ज़िंदगी में ऐसा रुख करेगी कि जहाँ उसको और उसको पहले से पता चल जाता कि ये होने वाला है तो वो जाती? कभी भी ना जाती। तो हमेशा तैयार रहिए। हमारे अपने बहुत प्यारे साथियों में किसी के बच्चे की डेथ हुई और उन्होंने बताया तक नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि मुझसे ड्यूटी ना ले लें आज की, अगले दिन बताया। बच्चे पे सब्र, इतना बड़ा सब्र, ये हौसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की किताब सिखाती है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें गम ना दे औलाद के, और अगर कोई हमारे हक़ में बेहतर है, कोई ऐसी चोट पड़े तो अल्लाह ताला फिर उस पर अजर भी अता फरमाए। और ये आखिरी जुमला तो बहुत ही खूबसूरत है ना, वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून। ये इंसानियत की एक बहुत बड़ी महरूमी है कि अक्सर को अल्लाह ताला की इतने बड़े बड़े वादों का यकीन नहीं होता। तो चलिए आगे चलते हैं, पिछले सबक का खुलासा, क्या टॉपिक्स किए गए उसमें। टॉपिक पहला क्या है, वही बारिश बरसाता है। हकीकत यह है कि बारिश का बरसना भी एक जादुई अमल है, अगर हम इसको जादू कहें, लेकिन हम इसको जादू नहीं कहते, ये खुदाई अमर है। कैसे सूखी प्यासी ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला बारिशों को ले आता है, और फिर वो चीज़ें कैसे अपनी जगह पे खड़ी हो जाती हैं। तो अल्लाह से कभी नाउम्मीद ना हो, कभी मायूस ना हो, उसकी रहमत पे हमेशा नज़रें लगाए रखिए, फिर नेमुल बदल भी वही देता है। यानी ज़िंदगी में अगर कभी कोई चीज़ आपसे छिन गई और आपने उस पर सब्र कर लिया, तो ज़्यादा फिक्र ना कीजिए, अल्लाह की ज़ात है जो आपको इसका बेहतरीन नेमुल बदल भी अता करेगी। मांगना है तो अल्लाह से मांगो, कीमती लम्हात में, और वो कौन से हैं, रात की घड़ियाँ, दिन की घड़ियाँ, ये वो घड़ियाँ होती हैं कि जिस वक्त अल्लाह ताला खुद आसमाने दुनिया पे आकर पुकार लगाते हैं या लगवाते हैं कि है कोई जो मुझसे मांगे और मैं इनको देना चाहता हूँ। मुसीबत में कौन हमारे काम आ सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला। मौत का एक किस्सा पढ़ा था हमने, और मौत तो अपनी जगह खुद भी एक बहुत बड़ा उस्ताद है। कफा बिल मौत वाइज़ा के लफ्ज़ हैं हदीस में, कि वाइस ढूंढते हो किसी को कि आए और कोई वाज कर दे, तो मौत को देख लो, उससे ज़्यादा अच्छा वाज देने वाला कोई नहीं, क्योंकि दूसरों की मौत में तुम्हें अपनी मौत दिखेगी। फिर मौत में ना ताखीर हो सकती है ना तकदीम, ला यस्तकदिमून वला यस्ताखिरून। तो फिर क्या फिक्र करनी, जब आनी जो है तो आ जाएगी। सुबह के सबक का बहुत गहरा असर है दिल दिमाग पे, और मैं अभी भी आ रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि अभी भी मैं खुली फिर रही हूँ, अभी भी उस एक बंद छोटी सी कब्र में नहीं हूँ, तो अल्लाह ताला मुझसे कुछ ले ले। अभी तू मुझे बार बार जो मौका दे रहा है इस दुनिया में घूमने फिरने का, तो ये तू मुझे एक मोहलत दे रहा है कि अपने जाने से पहले जो भी अपनी नेकियां जमा कर सकूं मुझसे वो करवा ले। फिर उसके बाद जिन्हें तुम पुकारते हो वो गुम हो गए, यानी झूठे सहारे, गैर अल्लाह के सहारे, मकड़ी के जाले। बेकार है किसी पे नज़र रखना, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह ताला दे देगा तो उसी से लेना है, और अगर वो नहीं देता तो भी कोई बात नहीं, फिर हमने किसी और से नहीं लेना। जैसे बच्चा माँ ना दे और कोई दूसरा देने लगे ना, तो बच्चा नहीं लेता, कहते माँ से ही लेना है। आप दीजिए ज़रा दूध किसी को, बच्चे को दूसरे के हाथ में दें, तुम पिला लो, नहीं, उसको यकीन आता है और उसको मोहब्बत आती है तो माँ ही के हाथ से पीकर आती है। फिर इसी तरह कभी बीमारी ही शिफा बन जाती है। कैसे हमने देखा कि बिच्छू के डसने ने एक शख्स को उठाकर खड़ा कर दिया। ज़िंदगी में हम भी कभी कभी बहुत तकलीफ़ में होते हैं, हम बीमार हैं, सुस्त हैं, कोई ऐसा मामला हो जाता है कि उठ के भागना शुरू हो जाता है बंदा। गम की कैफियत अलग होती है, उस वक़्त अपनी जान बचानी या किसी और की बचानी, और इंसान ठीक हो जाता है। तो लिहाजा इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। फिर औलिया की करामात, और औलिया कौन है, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। तौलिये कराम वो होते हैं जो अल्लाह ताला का तक्वा अख्तियार करते हैं और हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा को सामने रखते हैं, और फिर अल्लाह ही बेहतरीन मददगार है। आज हम शुरू करते हैं, हलाल रोज़ी खाएं, दुआ कबूल होगी। बहुत ही पते की बात है, मैं ऐसे किसी शख्स को जानती हूँ कि वो किसी भी ऐसी जगह से तब तक नहीं खाते जब तक उनको यकीन ना हो कि इनका सोर्स ऑफ इनकम हलाल है। तो जब पूछा जाए तो आगे से यही कहते हैं कि मैं अपनी नमाज़ें ज़ाया नहीं कर सकता या मुझे अपनी दुआओं को कबूल कराना है। तो बात इस वक्त फिकी बातें नहीं कर रहे क्या किसका मसला, लेकिन याद रखिएगा कि ज़िंदगी में एक असूल बनाएं, अगर बंदों के दिलों में रहना है या अल्लाह की नज़र में रहना है तो रिस्क का इंतज़ाम हलाल से करें। उसमें सोर्स ऑफ इनकम भी आता है, कमाया कैसे, कोई नाफरमानी के तरीके से रिस्क तो नहीं आया, और जो चीज़ खा रहे हैं वो भी हलाल हो, यानी इंग्रेडिएंट्स उसके बहुत खूबसूरत हों। और जितना ज़्यादा एक इंसान रिस्क हलाल का एहतमाम करेगा, सोचेगा, उतना ज़्यादा अल्लाह ताला के हाँ उसकी बेहतरीन तरीके से बातचीत होगी और वो उसको लेकर चलेगा। और इसके बाद आप देखिए कि नेक्स्ट थिंग जो होती है, जिसमें एक और चीज़ लेकर फिर हम देखते हैं इसको, और वो क्या है कि मिलना तो उतना ही है जितना के लिखा था। सोर्स ऑफ इनकम जो बनाएंगे नसीब में वही होगा। पीछे हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक वाक्या भी पढ़ चुके हैं कि देता तो मैं जो हलाल से था, लेकिन उसने जल्दी करके उतना ही हराम से ले लिया। ज़िंदगी की ये एक हकीकत है कि इंसान अगर गैब के पर्दे से झांक ले तो उसको ये बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से अल्लाह ताला की मर्ज़ी को पीछे कर देता है। तो आइए थोड़ा सा बुक में से पढ़ते हैं। हलाल रोज़ी खाएं, दुआ कबूल होगी। सात भी नबी वक्कास इस हकीकत से आशना थे, वह अशरा मुबशरा में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक़ में सही हदफ़ और इजाबत दुआ की दुआ फरमाई, यानी कि अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कबूल फरमाए। चुनाचे जब भी दुआ करते तो कबूल होती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कई सहाबियों को भेजा कि कूफा में सात के अदलो इंसाफ के बारे में मालूम करें। लोगों ने आपकी तारीफ़ की। जब वो कबीला बनु अब्स की मस्जिद में पहुँचे तो एक आदमी ने कहा कि आप सात के बारे में पूछ रहे हैं, वो मामलात में इंसाफ से काम नहीं लेते, रियाया के साथ नहीं चलते। सात रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, देखिए इतने सच्चे इंसान के बारे में भी कोई ये कमेंट दे सकता है, तो दिए जाते हैं। अच्छे लोगों पे भी बुरे बुरे कमेंट्स लोग दे सकते हैं, इस पे भी गम ना किया करें। ये चीज़ हम पीछे भी एक टिप में पढ़कर आए हैं। खैर, सात रज़ी अल्लाह अन्हु तक ये बात गई होगी तो उनको कितना दुख और कितना सदमा हुआ होगा। कहने लगे, खुदाया अगर इसने महज रियाओ नमूद के लिए ये बात कही है तो इसको अंधा कर दे। यानी वो दूसरों की नज़रों में बड़ा बनना चाहता है, वो जिसको हम कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या नाम तो होगा। इसकी उम्र दराज कर और इसे फितनों में मुब्तला कर दे। चुनाच इस शख्स ने लंबी उम्र पाई, इसके पपोटे आंखों तक लटक आए थे। कूफा की सड़कों पर लड़कियां इसकी तरफ इशारा करती, वह अपने बारे में कहता, ये बूढ़ा मफ्तून हो गया। मफ्तून मीन पागल, फितनों में आ गया यानी पागल पांजा दीवानगी। इसे साद रजी अल्लाह अन्हो की बददुआ लगी है। देखिए वो खुद मान रहा है कि मुझे साद की बददुआ लगी है, तो जो किसी के लिए घड़ा खोदता है खुद उसमें गिर जाता है। ये नतीजा था अल्लाह तबारक व ताला से ताल्लुक, सिदक नीयत और इसके वादे पर भरोसे का। अब आप देखिए कि ये भी बात पढ़ी है मैंने कि उसका अल्लाह से इतना गहरा ताल्लुक, यानी अल्लाह के कुछ बंदे हैं कि उनके बारे में बुरी बात कहते हुए 100 दफ़ा सोचिए। आपको क्या पता वो अल्लाह का कितना करीबी हो, अल्लाह का दोस्त हो या अल्लाह उसका दोस्त हो, और आपकी बात से अल्लाह ताला उसका बदला लेने के लिए आपको काफ़ी हो जाए। फिर इसी तरह से सेर अलामुन नुबला बड़ी मारूफ किताब है, यानी हिस्टोरिकल बुक है। इसमें हज़रत सात रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में मज़कूर है कि एक शख्स ने खड़े होकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को गालियाँ देनी शुरू की। सात रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत अली का दिफा किया, लेकिन वो आदमी गालम गलोच करता रहा। सात रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, खुदाया मेरी तरफ से तू इसे जवाब दे जैसे चाहे। कूफा का एक ऊंट लोगों की तरफ दौड़ता हुआ आया और बिना इधर उधर मुड़े लोगों पर चढ़ता चला गया, हत्ता कि इस आदमी के सर पर पहुंच गया और सब लोगों के सामने इसे पैरों से रौंद डाला। देखिए ये है मुस्तजाबुद दावात लोग। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की दुनिया की ज़िंदगी में मदद और नुसरत फरमाएंगे, और उस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे। यह किस्से हमने इसलिए बयान किए हैं कि आपके अल्लाह पर ईमान और इस पर भरोसे में इजाफा हो। सिर्फ इसी को पुकारें और सरगोशी करें, करम वही करता है और किताब अजीज़ में इसी का फरमान है, क्या तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें तो कह दें फ़ैनी करीब उजीबु दावतद्दा इज़ादान, जो मुझे पुकारता है मैं उसकी सुनता हूँ। हज्जाज ने हसन बसरी को सज़ा देने के लिए बुलाया, हज़रत हसन चले गए। इनके जहन में सिर्फ़ अल्लाह का लुत्फ़ व करम और इनायत थी, अल्लाह पर भरोसा था। चुनाचे उन्होंने अल्लाह से दुआ की, इसके अस्माउल हुस्ना और सिफ़ात आलिया का वास्ता दिया, तो अल्लाह ने हुज्जाज का दिल बदल दिया, इसमें रोब डाल दिया। और हसन बसरी इसके पास जैसे ही पहुँचे, इसने इनका इस्तकबाल किया, दरवाजे तक आया, इन्हें साथ लाया, कुर्सी पर बिठाया और नरमी और इनायत से गुफ्तगू फरमाई। यानी ये रब्बे काबा की कुव्वते तस्खीर थी। ये भी नोट करें, बाज़ दफ़ा कुछ लोग आपसे बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, उन्होंने आपको देखते ही को कड़वी बात ज़रूर करनी होती है, अल्लाह ज़ुबान पकड़ लेता है। अल्लाह ताला को पता है कि आप उसकी बात के मुस्तहिक हैं कि नहीं, तो जब आपका मामला अल्लाह से सीधा होता है तो फिर अल्लाह ताला आपको हर तरह की चीज़ों में काफ़ी हो जाता है। अल्लाह ताला की रहमत कायनात में जारी है, आलम इंसान में, आलम हैवान में, बर्रो बहर में, रातों दिन में, और मुतहर्रिक और साकिन में, यानी हर चीज़ में अल्लाह की रहमत दिखती है। फरमाए कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इसके गुण न गाती हो, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। बिला शुबा वो हलीम और मग़फ़रत वाला है। सही और साबित है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बातचीत समझ आती थी। एक दिन लोगों को लेकर नमाज इस्तस्का के लिए निकले, रास्ते में एक चींटी देखी जो पैर उठाकर अल्लाह से दुआ कर रही थी। सोचिए कैसी लगती होगी, हूँ कि तू ही देता है, तू ही करम करता है, तू ही फरियाद रस है। सुलेमान ने लोगों से कहा, लौट चलो, गैर की दुआ तुम्हें भी काफ़ी होगी, यानी इस चींटी की दुआ से तुम्हें भी बारिश मिल जाएगी, ये मुराद है। चुनाचे चींटी की दुआ पर ज़ोर की बारिश होने लगी। ये वही चींटी थी जिसकी बात हज़रत सुलेमान ने उस वक्त भी सुनी थी जब लश्करे जर्रार के साथ जा रहे थे। इसने अपने साथियों से कहा था और कुरान ने बयान किया, एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, या अयतुहन नमलतुन, अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान और इनका लश्कर अनजाने में तुम्हें पीस डाले। और इसके कॉल पर आपको हंसी आ गई। सूरत नमल आयत 18-19 में ये बात हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके। क्या पता चला कि बाज़ दफ़ा बारान यानी बारिश बेज़ुबानों के बायस अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है, यानी बेज़ुबान जानवर, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ भी जो कहते हैं, तो अल्लाह ताला उससे भी अपनी रहमत की बारिश बरसा देता है। अबू याला ने एक हदीस कुदसी बयान की कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे इज्जत व जलाल की कसम, अगर बूढ़े इबादत गुजार, दूध पीते बच्चे और चरने वाले जानवर ना होते तो मैं तुम पर आसमान की बारिश बंद कर देता। अल्लाह अकबर, क्या पता चला कि इन मासूमों और इन मजलूमों या एक जो बहुत ही कमज़ोर हैं, इनकी वजह से कभी कभी बारिश हो जाती है। और हदीस भी है कि तुम्हें तुम्हारे कमज़ोर लोगों की वजह से रिस्क दिया जाता है। तो फिर हमने क्या सीखा, अगर ज़रा से इसको देखिए तो खुलासा क्या है, हलाल रोज़ी खाइए, दुआ कबूल होगी। और फिर इसमें जो चीज़ें देखी उसमें हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, इबादत होती है रिस्क हलाल कमाना। अपने घर के मर्दों को बताइए कि आप जो कमाने निकलते हैं या आप इबादत करने निकलते हैं, शर्त वही है कि बाकी इबादत और इन छोटी मोटी चीज़ों का अगर इख्तमाम किया जाए तो अलकासिबु हबीबुल्ला। फिर इसी तरह हमने देखा कि जैसे इबादत के बाद दुआ कबूल होती है, वैसे ही हलाल कमाने के बाद भी दुआ कबूल होती है। और अल्लाह अपने दोस्तों की मदद कैसे करता है कि इनके खिलाफ लोगों के दिलों में रोब डाल देता है। और आप देखेंगे लोग पीठ पीछे कुछ भी कह दें, मुंह पे कुछ नहीं कह पाते, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक किस्म की नुसरत होती है। और वो हदीस आपने भी सीओ बार सुनी होगी कि अल्लाह के नबी ने कहा कि एक शख्स बड़ा लंबा सफ़र करता है, बाल भी बिखरे हुए, मट्टी बड़ी भी, और वह आसमान की तरफ हाथ फैलाकर दुआ करता है, या रब्बी या रब्बी, हालांकि इसका खाना पीना पहनना और ग़िज़ा हराम है, तो फिर इसकी दुआ कैसे कबूल की जाए। وزی بالحرام، اور اسی طرح سے مل بسہو بالحرام. یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2021 نمبر کی. ہم نے کیا سیکھا اس سارے حصے سے؟ پچھلی چیزوں میں پریشانیوں کے علاوہ راحتوں میں بھی صرف اللہ کو پکارنا ہے. زندگی کے زہریلے حالات کسی اور بیماری کے لیے باعث شفا بن جاتے ہیں. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کے اولیاء میں شامل ہونا ہے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے حلال روزی شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا آسان کرے اور اس چیز پہ غور کریں. تو آج پھر ہمیں اپنے مردوں کو دینے کے لیے ایک نقطہ مل گیا کہ رزق حلال کا اہتمام. یاد رکھیے کہ رزق حلال ہوگا تو اولادیں فرما بردار ہوں گی. ایک بڑا واضح سا اللہ تعالیٰ نے اصول رکھا ہے کہ جب باپ کی کمائی میں حرام اور ماں کی عصمت پہ داغ لگ جاتا ہے تو اولادیں بگڑ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. اگلا ٹاپک، ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے. کس کی؟ اللہ کی. ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. پرندوں کی دنیا میں خود خود نے اپنے رب کو پہچانا کہاں ہے؟ قرآن میں سورۃ نمل. اس کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا، اس نے پرندوں کا جائزہ لیا، کہا کیا بات ہے کہ خود خود نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ غائب ہو گیا؟ اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کروں گا؟ یا تو کوئی صریح یعنی واضح دلیل لے کر آئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ آ کر بولا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جو آپ کو معلوم نہیں، میں اہل سبا کی یقینی خبر لایا ہوں. میں نے پایا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا. شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا. بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ واحد کے لیے سجدے کرے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے. سلیمان نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے. میری اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر اس کے پاس سے ہٹ اور آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. خود خود جاتا ہے اور پھر وہ قصہ پیش آیا جو معروف ہے، جس کے تاریخی نتائج ہوئے. اس کا سبب وہی پرندہ تھا جسے معرفت رب حاصل ہوئی تھی. حتیٰ کہ بعض علماء کہتے ہیں یہ خود خود فرعون سے بھی زیادہ دانا نکلا. ذرا سنیے گا، فرعون نے خوش خالی میں رب کی نافرمانی کی اور مصیبت آتی دیکھ کر ایمان لایا، لیکن اس کے ایمان نے فائدہ نہ دیا. خود خود نے خوش خالی میں ایمان سے کام لیا جو شدت کے وقت میں اس کے کام آیا. کیا کہا تھا خود خود نے؟ سورۃ نمل. وہ اس الہ واحد کے لیے، یعنی وہ اس الہ واحد ان کے لیے سجدے نہیں کرتے جو پوشیدہ چیزوں کو نکال دیتا ہے. اس کے برعکس فرعون کہتا تھا، میرے سوا کون تمہارا رب ہے؟ جس آدمی سے پرندہ بھی زیادہ ذکی یعنی عقل مند ہو، چیونٹی بھی اس سے زیادہ انجام کی سمجھ رکھتی ہو، اس کی بدبختی اور شقاوت یعنی شقی ہونا اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ وہ ناپاک ہی تو ہے جس کے راستے بند، تدبیر منقطع اور اعضاء معطل ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں، کان ہیں جس سے یہ سنتے نہیں. اللہ اکبر. سورۃ الانعام 179 میں ایک بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتا دی، یعنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کا رب کو پہچاننا یہ ان کی تسبیح ہے. یہ مراد ہے ان ساری مثالوں سے. شہد کی مکھیوں کی دنیا میں اللہ کا لطف و کرم اور عنایت ربانی دیکھیے. یہ مخلوق کتنی معمولی اور چھوٹی ہے. اللہ کے حکم سے وہ اپنے چھتے سے نکلتی ہے، پاکیزہ اور خوشبودار چیزوں پر بیٹھتی ہے اور ان کا مشروب چوس لیتی ہے. اسے پھولوں سے پیار اور کلیوں سے عشق ہے. ان سے واپس آتی ہے اپنے ہی خلیے میں، یعنی جو ان کا بنایا ہوا تھا ایک سانچہ، اس میں جاتی اور ایسا عمدہ مشروب بناتی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور رنگ مختلف. وہ راستہ نہیں بھولتی جس کے خلیوں میں کبھی نہیں جاتی. यानी दूसरों में नहीं जाती, अपने ही रास्तों पे जाती है, दूसरों के खुलियों में कभी नहीं जाती। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत नहल आयत 68-69, और तेरे रब ने शहद की मक्खियों को वही कर दी कि पहाड़ दरख्तों और छप्परों को अपना मस्कन बनाए, फिर तमाम फलों को खाए और रब्बे ताला के आसान करदा रास्तों पर चले। इसके पेट से ऐसा मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं और जिसमें लोगों के लिए शिफा है, बिलाशुबा इसमें तफक्कुर करने वालों के लिए निशानी है, यानी जो लोग गौर व फिक्र करते हैं। इन किस्सों और इबरत आमोज़ वाक़यात से आपको ये फ़ायदा होगा कि ये जानेंगे कि अल्लाह वाहिद का लुत्फ़ खफ़ी, यानी ना नज़र आने वाला उसका लुत्फ़ हर तरफ जारी व सारी है। इसीलिए बस उसी को पुकारें, इसी से लो लगा लें, इससे मांगें, और ये सारे लोग, ये पूरी दुनिया इसके मुकाबले में आपके किसी काम की नहीं। ये सब मसाकीन हैं और सब अल्लाह के मुख्ताज हैं। अल्लाह ही से ये सब सुबह शाम अपने लिए आराम, खुशहाली, सेहत व आफियत और दौलत और जाहो मनसब की गुजारिश करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का मालिक बस वही अकेला है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत फातिर आयत नंबर 15, ऐ लोगो तुम अल्लाह के मुख्ताज हो और वो हमीद और बेनियाज हैं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाही वहुवल गनीयुन हमीद। आपको पूरे तौर पर और इल्मे यकीन की हद तक जानना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई ना हिदायत दे सकता है, ना मदद कर सकता है, ना हिफाजत कर सकता है और ना कुछ दे सकता है। लिहाजा बस दिल को इसी से जोड़िए, दुआ करें अल्लाह हमारा दिल तुझसे जुड़ जाए। इज्जत का मालिक वही है, सब इसी के मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। किसी शायर ने बहुत खूबसूरत बात कही कि है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़ुबां और दिल की शहादत के लायक। इसी से डरो गर डरो तुम किसी से, इसी पर मरो गर मरो तुम किसी पे। इसके अलावा फिल्मों में क्या होता है और नॉवेल्स में क्या होता है हम खुद जानते हैं। इसकी इबादत और इताअत से इसका कुर्ब हासिल करें। अगर इससे इस्तिग़फ़ार करेंगे तो वो माफ़ कर देगा, तौबा करेंगे तो तौबा कबूल करेगा, इससे मांगेंगे तो देगा, इससे रिस्क चाहेंगे तो रोज़ी देगा, मदद चाहेंगे मदद देगा, इसका शुक्र करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा देगा। तो फिर क्या सीखा हमने, हर चीज़ उसकी तस्बीह करती है। सब्बह लिल्लाह मा फिस समावाती व मा फिल अर्द। इस पे एक लेक्चर हमारे रमज़ान से पहले हुआ था, तस्बीह की हकीकत, बहुत ही उसमें मुख्तलिफ पॉइंट थे इसी मौजू से मुतल्लिक। हमारे कल्चर में अमूमन तस्बीह क्या है, 33 दानों वाली एक लड़ी, 100 दानों वाली, 500 दानों वाली, जो जितना नेक होता जाता है उसकी तस्बीह के दाने बढ़ते जाते हैं हमारे गुमान के मुताबिक। लेकिन हकीकत ये है कि वो लोग जो के ऐसी चीज़ों को रिवायती और रस्मी तौर पे ही लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि तस्बीह तो क्या है कि दिल की धड़कनों पे अल्लाह का नाम हो। एक बंदा हर लम्हे, हर वक्त, हर लिहाज से अल्लाह ताला का ऊपर नज़रें लगाए और उसके साथ अपने ताल्लुक़ को महसूस करे, और फिर उसमें उसको पता चले कि मेरे दिल की धड़कनों का मालिक अल्लाह। आप देखिए, जब अल्लाह से हकीकी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर हमारी अपनी मोहब्बतें बातिल की तरफ चलती हैं। फिर जो पढ़ा उसको ज़रा सा दोहरा लेते हैं। पहली बात क्या है कि जब कायनात की छोटी छोटी चीज़ें उसको देखती हैं, तो उसकी बात मानती हैं, ये भी उसकी तस्बीह है। और ये सूरह बनी इसराइल की आयत 44 है कि तुसब्बिहु लहु समावातु सब वल अर्दु व मन फीहिन्न व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिल्ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफूरा। सातों आसमान और ज़मीन और जो लोग इनमें हैं, सब इसी की तस्बीह करते हैं, और मखलूकात में से कोई चीज़ नहीं मगर इसकी तारीफ़ के साथ तस्बीह करती हैं। लेकिन तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझते, बेशक वो बुर्दबार और गफ्फार है।